ओम शांति। थक तो नहीं गए सुनते सुनते? नहीं, मनुष्य को सुनने की कम आदत होती है, सुनाने की जरा ज्यादा। फिर भी आप सभी यहाँ आकर स्टूडेंट बन गए हैं ना। और जो मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वार सदा खोल कर रखता है सीखने के लिए, उसे जीवन में नई नई बातें मिलती रहती हैं और प्रगति का पथ प्रशस्त रहता है जीवन भर। बुद्धि के द्वार खोल कर रखने हैं, कुछ लोग बंद कर देते हैं, सीख लिया बहुत कुछ, बस हो गया, अब नहीं। या दूसरों कहेंगे तुम हमें क्या सिखाओगे। तो आज हम इस सुंदर टॉपिक को लेकर चलेंगे। मेरा लक्ष्य ये रहता है, आज भी यही है, भाषण में ही आप सभी अपने पर बहुत सूक्ष्म दृष्टि डालेंगे, अपने जीवन को देखेंगे। जीवन में वो सब कुछ है जिसके लिए जीवन मिला है, सुख शांति, सफलता, पॉजिटिविटी, संबंधों में बहुत मधुरता और भी कई सारी चीजें जिससे हम जीवन का आनंद ले सकते हैं, इस यात्रा को सुखद बना सकते हैं, वो है। तो सभी अपने पर दृष्टि डालेंगे, एक बात, ठीक है ना, पसंद है। दूसरी बात, स्वयं को कहीं ना कहीं बदलेंगे। बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें जान लेना चाहिए, यदि हमें सफलता नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, उसे ठीक कर लेने से सफलता का मार्ग खुल जाता है। यदि हमारे संबंधों में कड़वाहट है तो कहीं ना कहीं हमारी भी मिस्टेक है, हमें उसे ठीक कर लेना चाहिए। यदि हम खुश नहीं रहते जीवन में तो कहीं ना कहीं हमारे चिंतन की गड़बड़ है, उसे ठीक कर लेना चाहिए। स्व परिवर्तन, क्या हम वैसे ही बोल बोलते हैं दूसरों से जैसे बोल हम सुनना चाहते हैं? क्या बोल बोलने की कला हमने सीख ली है? चेक करेंगे और चेंज करेंगे, ये दो लक्ष्य हैं आज की इस चर्चा के। तो जब आप सभी इस क्लास के बाद उठेंगे, थोड़ा उठेंगे या नहीं उठेंगे, आपको अपने को चेंज कर लेना है। और छोटी सी चेंज से जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लोग आते हैं मेरे पास, तो हमें देख लेना है। सभी बुद्धिमान बैठे हैं भाई बहने, बुद्धिमानी का प्रयोग अपने को सुखी और शांत बनाने में कर लेना चाहिए। हमारी बुद्धिमानी ऐसी ना हो जो हमें ही परेशान कर दे। मैं एक बात हंसी में ही कहा करता हूं कि आज जितना बुद्धिमान मनुष्य पहले कभी नहीं था, ठीक है, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य जितना आज परेशान है उतना भी पहले कभी नहीं था। बुद्धि तो बहुत हो गई, लेकिन सद्बुद्धि, सद्विवेक, सद्ज्ञान, उसकी बहुत जरूरत है। हमें कॉलेजों में जाने का मौका मिलता है, स्टूडेंट से बिल्कुल फेस टू फेस, थोड़े स्टूडेंट कहीं 200 कहीं 300 बैठे होते हैं, डायलॉग करने का मौका मिलता है। मैं उनसे पूछता हूं, आपकी एजुकेशन केवल इन्फॉर्मेशन है या नॉलेज है? अब उनको इतना ज्यादा पता नहीं होता इन दोनों में क्या अंतर है, इन्फॉर्मेशन है या नॉलेज है। एक दो बच्चा उत्तर देता है, हमें तो जो पढ़ाया जाता है हम रट लेते हैं, एग्जाम में इतने नंबर लाना हमारा लक्ष्य होता है, बाकी हमें कुछ पता नहीं। प्रोफेसर बता देते हैं कोई कोई कि आजकल की एजुकेशन इन्फॉर्मेशन बन गई है, वो विद्या में ही रह गई है, इसलिए हमें इन चीजों को अपनी विद्या बनाना है, अपना विजडम बनाना है, अपना विवेक बनाना है, ताकि वो हमारे जीवन को प्रभावित करते ही रहे। तो बहुत सारे पहलू इसके हम आज लेंगे और सभी एंजॉय भी करेंगे, परिवर्तन भी करेंगे, अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। शुरुआत करता हूं, कई कपिल्स मेरे पास आते हैं, स्त्री पुरुष, एक की कहानी सुना रहा हूं, ये बात मैं कईयों से कर लेता हूं। आयु होगी उनकी लगभग 45 साल, दोनों आकर बैठे और बैठते ही कहा, भाई जी हम दोनों बहुत लड़ते हैं, सीधा हमें ऐसी विधि बताओ हमारी लड़ाई बंद हो जाए। मैंने देखा चेहरा, लगते तो पढ़े लिखे हैं, मैंने पूछा क्या करते हैं आप दोनों, हम दोनों ही लेक्चरार हैं। क्या क्वालिफिकेशन है, MA MPhil हैं दोनों, बहुत अच्छी बात है। मैंने उनको अप्रिशिएट किया और फिर पूछा ये बताओ अब डीपली सोच के आप दोनों में से बुद्धिमान कौन है। अब वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे, कौन कहे मैं हूं, कहते भी थोड़ा होता है ना, लोग गलत समझेंगे। मैंने कहा ठीक है आप दोनों ही बुद्धिमान हैं, अब मुझे ये बताओ आप दोनों में से समझदार कौन है। तो बहन ने तुरंत उत्तर दिया मैं हूं। बहुत अच्छी बात थी ये, मैंने भी यही सोचा था ये बहन ही कहेगी मैं हूं समझदार। तो मैंने बस उनको कहा जो समझदार है उसे झुककर चलना चाहिए, और उसने स्वीकार किया। अब ताली भाइयों ने बजाई या बहनों ने? अच्छा दोनों ने बजाई। उसने स्वीकार किया और ये सच्ची बात है, उनके झगड़े समाप्त हो गए। हम जब एक दूसरे के विचारों को सम्मान नहीं देते, जब ये सोचते हैं मैं ही राइट हूं, तब ये संघर्ष प्रारंभ होते हैं। और आप में से कईयों को शायद अनुभव हो, मैं तो नहीं चाहता किसी को अनुभव हो, संबंधों की कड़वाहट का, जहां पति पत्नी के बीच थोड़ा क्लेश है वो अच्छा नहीं रहता, क्योंकि उसका प्रभाव बच्चों पर बहुत बुरा पड़ता है। और आपस में भी जो सुख जीवन का मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। तो हमें एक दूसरे के विचारों को सम्मान देकर चलना है। एक प्रश्न सभी अपने से पूछेंगे, बिल्कुल अंदर जाएं आप अपने और पूछें, मेरा ईगो महत्वपूर्ण है या संबंधों का सुख क्या है? ईगो हम में था थोड़ा ही, ये तो आया है बाद में। आज आपने सवेरे आत्मा का लेसन सुना है, आत्मा तो बहुत पवित्र मूल रूप से संपूर्ण शांत, बहुत शक्तिशाली, बहुत सुखी है। हमने गड़बड़ कर दी, उसमें और चीजें डाल दी, जैसे सोना बिल्कुल प्योर हो और हम मिलवाते चले जाएं कुछ कुछ, ये गड़बड़ हमने की है। तो हमारा ईगो इंपोर्टेंट नहीं, हमारा अहम इंपोर्टेंट नहीं, ये अभिमान इंपोर्टेंट नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको कहना चाहूंगा बहुत ब्रीफली, जो कुछ हमारे पास है, आप में से कई बहुत पैसे वाले हैं, कई बहुत अच्छे पद पोजीशन वाले बैठे हैं, कईयों के पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और कंपनी हैं, आप में से कईयों को बहुत मान सम्मान प्राप्त है जीवन में, कईयों के परिवार बहुत सुंदर हैं। एक ही बात ध्यान में रखकर चलना है, ये सब कुछ जो मुझे मिला है वो प्रभु देन है। स्वीकार है? बोलो पीछे वाले भाई, स्वीकार है? ये हम लोगों ने प्रैक्टिस की, मैंने की बहुत अपने जीवन में। हमें ईश्वरीय ज्ञान मिलता है और उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म चेकिंग करने को मिलता है अपनी, और हमारे अध्यात्म के मार्ग पर मैं और मेरा इसको छोड़ना ही एक मुख्य लक्ष्य होता है। इसको छोड़े बिना इस मार्ग पर कोई भी अपने जीवन को दिव्यता से भर नहीं सकता। तो महसूस हुआ कि मनुष्य को जब ज्ञान भी बहुत मिलता है तो भी उसमें कहीं ना कहीं ईगो आ सकता है, जब उसे सफलता बहुत मिलती है तो भी वो ईगो का शिकार हो सकता है, जब उसे समाज में मान और मान्यता बहुत मिलती है तब भी कहीं ना कहीं अभिमान प्रवेश करने की संभावना होती है, जब उसके बच्चे बहुत योग्य सफल बुद्धिमान हो जाते हैं तो भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म अभिमान आ सकता है। और ये याद रखेंगे, बहुत सूक्ष्म, इसको हम सीक्रेट कहते हैं अध्यात्म का, जिस चीज का भी हमें अभिमान आ गया उसका सुख समाप्त होने लगेगा। ध्यान रखेंगे आप, धन का अभिमान आ गया धन का सुख नहीं ले पाएंगे, बुद्धि का अभिमान आ गया हमारी बुद्धि हमें परेशान करने लगेगी ज्यादा सोच सोच कर, हमें मान सम्मान बहुत मिल रहा उसका अभिमान हो गया तो ये मान सम्मान हमारा नष्ट हो सकता है, या उसका अभिमान हमें कष्ट दे सकता है, हमें सुख शांति से वंचित कर सकता है। तो सभी इस बात पे बहुत ध्यान देंगे, जो कुछ मुझे प्राप्त है वो सब ईश्वरीय देन है, प्रभु प्रसाद है, भाग्य भी है या नहीं? आपने मेहनत करने वाले बहुत देखे होंगे नहीं प्राप्त कर पाते कुछ, आपने बुद्धिमान बहुत देखे होंगे नहीं सफल हो पाते जीवन में, भाग्य भी जब साथ देता है मेहनत के साथ तो जीवन चमकने लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे जीवन जीने का बहुत सुख मिलेगा। दूसरी चीज, मनुष्य का क्रोध उसका बहुत बड़ा शत्रु है या नहीं? क्रोध की तो कितनी कहानियां आती हैं, आप सब तो बड़े हैं, आजकल की जो नई पीढ़ी है जो हाईली एजुकेटेड है, जैसे हमारी एजुकेशन की बात मैंने की, हमारी एजुकेशन में एक और निगेटिव एस्पेक्ट आ गया है और वो है कि हमारी ये शिक्षा डिग्री तो देती है पर मनुष्य को नम्र नहीं बनाती, अभिमानी बना देती है। ये बहुत हो रहा है, जिसने हायर एजुकेशन लेके अपने को नम्र नहीं बनाया, अपनी बुद्धि को अच्छा नहीं किया, उसके संबंधों में टकराव रहता है। देखिए मैं दो चार उदाहरण दे देता हूं आपको एक एक मिनट में। एक लड़की की शादी हुई, मेरे पास आई है, वो एक बच्चा हुआ, ये है बैंक मैनेजर, इसने बीई और एमबीए कर लिया, बैंक मैनेजर ये है, इसका पति वो बैंक ऑफिसर था। अब इसको ये अभिमान, मैं तुमसे हायर पोस्ट पर हूं, मैं ज्यादा कमाती हूं, और उससे इसका व्यवहार बिगड़ने लगा, दो चार साल में ही बिगड़ गया, इसके बोल बिल्कुल खराब हो गए, आखिर वो इसे छोड़ के दुबई चला गया, अब आता ही नहीं, डिवोर्स नहीं दे रहा है पर आता ही नहीं। इसको एक छोटी बच्ची है, मेरे पास आई अभी कुछ दिन पहले, यहां आई थी ऐसे ही प्रोग्राम में, ज्ञान उसने ले लिया, अब कहती है मुझे अपने पति को बुलाना है, विधि बताओ, कोई समाधान चाहिए मुझे। मैंने कहा भगाया किसने उसे? फिर कहने लगी, मैंने रियलाइज कर लिया सचमुच वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, मैं कितना बोलती थी वो चुप रहता था, मैं गुस्सा करती थी वो मुस्कुराता रहता था, पर आखिर मनुष्य कब तक सहन करेगा भाई? उसने सोचा, हे देवी मुझे विदाई दो, अब सुखी है बहुत। बिल्कुल सच्ची घटना है, जरा भी मिक्स नहीं कर रहा, मैं कम सुनाया है। दूसरी घटना अभी दो दिन की, दो तीन दिन पहले की, एक का ऐसे ही फोन आता है, शादी हुए एक साल हुआ है, अब मेरा पति कल ही चला गया है, कहां गया मुझे पता नहीं, मैंने एक दो फोन किया शुरू में उसने उठा लिया, कल बस मैं इधर हूं, मैं ठीक ठाक हूं, तुम भी ठीक रहना। आज सवेरे से उसने, मैंने उसको, दोपहर का टाइम था तीन दिन पहले, आज सवेरे से मैंने उसको 100 फोन कर लिए, मेरे फोन उठाता ही नहीं, अब मैं बहुत दुखी हूं, कुछ विधि बताओ मेरा पति वापस आ जाए। मैंने कहा क्रोध कर लिया था, हाँ क्रोध मुझे बहुत आ गया था, मैंने उसकी भावनाओं को बहुत हर्ट कर दिया और वो चला गया है। मैंने उसे हंसी में कहा मेरी मानो तो एक काम कर लो, 7 दिन तक उसे फोन ना करो, आप ही आ जाएगा। पर ये कहां संभव, जो सवेर से दोपहर तक 100 फोन कर चुकी वो फोन ना करे 7 दिन, क्योंकि साइकोलॉजी है ये, अगर वो नहीं करेगी तो वो करेगा फिर। तो बहुत परेशान मैं सोचने लगा, देखो क्रोध मनुष्य के जीवन को कितना नरक तुल्य बना देता है, क्रोध में मनुष्य कड़वे वचन बोलता है, उसका विवेक नष्ट हो जाता है, घाव कर देता है दूसरों को और संबंधों में दूरी बन जाती है। ऐसे कई उदाहरण हैं, हम सभी इस जीवन का सुख लेने के लिए अपने क्रोध का शमन करें। क्रोध बहुत बुरा है, कैसे करें? मैं अपनी सभाओं में तो पूछा करता हूं, जहां ब्रह्मा कुमार कुमारियां बैठते हैं ना, 1000 की अगर सभा है, मैं पूछता हूं कितनों ने अपना क्रोध बहुत छोड़ दिया है, तो ये मैं आपको बहुत खुशी की बात सुनाता हूं, 60% लोग हाथ उठाते हैं, भाई बहने हमारा बहुत सारा क्रोध छूट गया है। क्या आपसे पूछ सकता हूं किस किस को कभी कभी क्रोध आ जाता है? अरे 100% ठीक है, छोड़ना है इसे, क्योंकि क्रोध से क्या क्या नुकसान होते हैं जरा ध्यान दे। एक बहुत सूक्ष्म चीज, मैंने इस पे अब से 50 साल पहले से बहुत ध्यान दिया था अपने पर, और तब मुझे एक साइकोलॉजिस्ट ने एक बहुत गहरा सीक्रेट बता दिया था। उन दिनों तो चारों ओर के वातावरण में निगेटिव एनर्जी इतनी नहीं थी 50 साल पहले, अब तो बहुत ज्यादा है। उसने कहा जब मनुष्य को क्रोध आता है तो वो जुड़ जाता है संपूर्ण निगेटिव एनर्जी से, और ये निगेटिव एनर्जी उसमें प्रवेश करने लगती है। इसलिए आप देखेंगे ज्यादा क्रोध करने से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती, कई परेशानी तो शरीर में होने लगती हैं, खुशी नष्ट हो जाती है, एकाग्रता नष्ट हो जाती है, काम में मन नहीं लगेगा, और किसी समझदार व्यक्ति को गुस्सा आ गया वो पछताएगा बहुत फिर कि ये गलत हो गया, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो छोड़ने के लिए मैं आप सभी को एक छोटी सी विधि बताता हूं, मैंने तो बहुत विधि अपनाई अपने लिए और सिखाया भी बहुतों को, और बहुत लोग सफल हुए इसमें। मैं आत्मा शांत हूं, सवेरे जब भी आप उठें 7 बार डीपली संकल्प कर लेना, स्वीकार करते हुए मैं शांत हूं, स्वीकार कर लें, शांति मेरी नेचर है, स्वीकार कर लें, शांति बढ़ने लगेगी, क्रोध घटने लगेगा। क्रोध मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार तो प्रेम है, प्रेम बढ़ने लगेगा, क्रोध घटने लगेगा। तो ये अभ्यास करने से और थोड़ा ध्यान देने से, एक है कभी क्रोध आ गया कोई बात ही ऐसी थी उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन क्रोध अगर हमारी नेचर बन जाए वो खतरनाक है, क्योंकि उससे हमारे ब्रेन को बहुत बैड एनर्जी जाती है, डैमेज करती है वो ब्रेन की शक्तियों को बहुत ज्यादा, इसलिए इस पे बहुत ध्यान देना है। एक्सपेक्टेशन से क्रोध बढ़ता है, हम चाहते हैं दूसरा व्यक्ति बिल्कुल ठीक काम करे, वो नहीं करता तो गुस्सा आता है, बिल्कुल नेचुरल बात है, वो रोज काम बिगाड़ रहा हो थोड़ा बहुत गुस्सा आता है। लेकिन फिर भी अपने को शांत करना अपने हाथ में। कई लोग पूछते हैं कि हमारे यहां तो क्रोध से काम चलता ही नहीं, नौकर कई काम करते हैं क्रोध के बिना, वो सुनते नहीं, क्या करेंगे। महावीर जी का बहुत अच्छा उदाहरण है कि एक सांप था, बहुत काटता था लोगों को, लोगों कहानियां हैं, लोगों ने शिकायत की स्वामी जी ये सांप बहुत तंग करता है, कोई इस रास्ते से नहीं जा सकता। स्वामी जी ने नाग को समझाया, भाई थोड़ा काटा ना करो, ये भी प्राणी है। नाग चुप हो गया। अब अगले दिन लोग निकलने लगे और देखा सांप देवता तो चुप हैं, तो पत्थर मारने लगे, घायल कर दिया बेचारे को। फिर स्वामी जी आए, कहा ये आपने मुझे शिक्षा तो दे दी पर लोगों ने तो मुझे घायल कर दिया, मैं क्या करूं। याद है, सुना होगा कि मैंने काटने को ही तो मना किया, फुंकार मारने को मना थोड़ा किया था, मार दिया करो कभी कभी। तो बस जहां आपका क्रोध बिना काम नहीं चलता वहां जरा सी फुंकार मार दिया करो, लेकिन चित्त में क्रोध की अग्नि न जले। ये एक तरीका है, जैसे ड्रामा किया जाता है ना, फिल्म वाले भी तो क्रोध कर देते हैं ना, लेकिन वो अंदर से थोड़ा ही आता है, बस काम हुआ और मन शांत। लेकिन जितना प्यार का माहौल आप अपने कर्म क्षेत्र पर बनाओगे उतना ही कार्य बहुत सरल होगा। मुझे बात याद आ गई, मैं आप सब में से कई लोग जनरल मैनेजर, डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर्स भी बैठे हैं, मुझे मिले हैं। मैं एक छोटा सा अनुभव सुनाऊं अपने किचन का। नीचे शांति वन में हमारा बड़ा किचन बन गया, अब से 20 साल पहले की बात है। 10,000 लोग आने लगे हर ग्रुप में, और कई ग्रुप आने लगे। हमारे पास स्टीम सिस्टम है, तब था, अब थोड़ा दूसरा बन गया है। हमारा भोजन 2 घंटे में बनता था एक टाइम का। हमारी टीम बहुत यूनाइट, हम लोग लक्ष्य रखते हैं सभी कार्यकर्ताओं में प्रेम हो, जरा भी झगड़ा ना हो, कहा सुनी हो ही नहीं, नो क्लैश, बहुत शांति से। और हमारे यहां जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज हैं राजयोग की, वो करते रहते हैं। अब आगे सुनो, 2 साल के बाद 12,000 आने लगे, तो भी भोजन 2 ही घंटे में बनता था। अगले 2 साल के बाद 15,000 आने लगे, तो भी भोजन 2 ही घंटे में बनता था, हमारी टीम वही थी। फिर 18,000, 20,000, तो भी भोजन 2 ही घंटे में बनता था। फिर 25,000, तो भी 2 ही घंटे में। अब नया सिस्टम लग गया, वो बहुत सुंदर है, अब देखकर जाना नीचे, यहां भी है छोटा सा उसका मॉडल। अब हम 40,000 तक का भोजन वहां बना सकते हैं केवल 1.5 घंटे में। बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपको ये बात इसलिए नहीं सुनाई कि मैं यहां की महिमा कर रहा हूं, मैंने इसलिए सुनाया अगर टीम यूनाइट हो, अगर हम अपने प्रेम की शक्ति से, अपने सुंदर बोल की शक्ति से, एनकरेज करने की नेचर से, एप्रिशिएट करने की नेचर से अपने टीम को यूनाइट कर लें, तो बड़े बड़े काम सहज हो जाएंगे। ये कुछ बातें मैंने कही आपको, दूसरों को एप्रिशिएट करना, प्रशंसा करना उनके कार्यों की, वो गलती कर दे तो उन्हें प्यार से सिखा देना, उन्हें एनकरेज करना, उमंग उत्साह दिलाना, उनकी आंतरिक शक्तियों को जगा देना, माहौल को बहुत स्वीट, साइलेंट और लविंग बना देना, इससे हमारे कार्य बहुत सहज हो जाते हैं। और स्पिरिचुअल पावर जब हमारी बढ़ जाती है, जब हम राजयोग करते हैं, हमारे इस अध्यात्म में एक बहुत सुंदर सिद्धांत है, यदि तुम्हारे मन की स्पीड धीमी रहे, ध्यान देंगे सभी बुद्धिमान भाई बहने बैठे हैं, यदि तुम्हारे मन की स्पीड धीमी रहे तो तुम्हारी एफिशिएंसी डबल हो जाएगी। बहुत सुंदर अनुभव आप अपने जीवन में, अपने कर्म क्षेत्र पर इस संबंध में कर सकते हैं। ये कला है संसार में सुखी सफल जीवन जीने की। मैं एक उदाहरण देता हूं, आज मैंने किसी एक छोटे ग्रुप को, भाई आए थे, उनको दिया ये, कुछ साल पहले की बात है। दिल्ली के पास के एक सिटी का एक युवक मेरे पास आया था, क्या समस्या थी उसकी। वो जैन परिवार से, तीन ही लोग, मां बाप और वो अकेला लड़का 22 साल का। उसने अपनी कहानी सुनाई, मैं सुसाइड करने के लिए रेलवे लाइन की ओर जा रहा था, तंग हो गया था 22 साल का, उस सिटी के सबसे साहूकार लोग, नगर सेठ का। रास्ते में मुझे मेरा बचपन का साथी मिल गया, हम दोनों पढ़ते थे, वो ब्रह्मा कुमार बन गया था। उसने मुझे कहा मुस्कुराते हुए, कहां जा रहे हो? मेरे चेहरे पे तो उदासी छाई हुई थी, मर जाता हूं अब। मैंने सारी कहानी सुनाई, उसने कहा चलो मर तो जाना, मरने से पहले मेरे साथ एक बार ज्ञान सरोवर चलो माउंट आबू। अभी मरना तो वो भी नहीं चाहता था, सचमुच नहीं चाहते, मरने वाले मरना नहीं चाहते, वो तो जाते हैं उधर को। मेरे पास कई कहानियां हैं, जाते हैं। एक उड़ीसा के बिजनेस वाले, कहानी सुना दूं बीच में, 3 साल पहले की है। मुझे फोन किया, मेरा फोन ऑन था ऑल ऑफ ए सडन उस टाइम। कहा भाई जी मैं मरने के लिए नदी के किनारे एक ऊंचे टीले पर आ गया हूं। तो मैंने कहा तो कूदो ना। नहीं डर लग रहा है, डर लग रहा है। मैंने कहा तो चलो वापस। चल दिया फट से मेरे कहते ही, उसको जैसे इंतजार थी कोई मुझे कह दे कि वापस चलो। और मैं उसे फोन से बात करता आया और उसको घर तक ले आया, और मैंने कहा आप सुखी रहो, मरने की जरूरत नहीं, मरते तो वो हैं जो बहुत कमजोर होते हैं, वो मुश्किल से 28 साल का होगा, तुम अभी युवक हो, जरा बोल्डली चलो, समस्याओं से घबराओ नहीं, ये तो आती हैं और चली जाती हैं। और वो खुश हो गया। और आप हैरान होंगे, 2 साल पहले फिर मैं उनके जिला ब्रह्मपुर है, ब्रह्मपुर नहीं कुछ और है, जहां मिसाइल्स का ये होता है, हाँ चांदीपुर, वहां तो मैं गया था प्रोग्राम में, तो वही मुझे लेने आया कार में, मुझे पता नहीं था कौन है। उसने अपना परिचय दिया, मैं वही हूं भाई जी, और ये मेरी कार 28 लाख की है, मेरा बिजनेस सुंदर चलने लगा। बस मैंने उसे कहा वो तुम्हारा बैड टाइम था, वो बीत गया ना, बस उसके बाद सुखद दिन आने वाले थे, तुम मर जाते तो ये सब खत्म हो जाता। तो मनुष्य के जीवन में कभी कभी ऐसा बैड टाइम आता है, उसको शांति से बिता देना चाहिए, फिर सुनहरे क्षण हमारा इंतजार करते हैं। अब कहानी सुनो उस जैनी लड़के की। तो यहां आए, मेरे से मिलाया, मैंने उससे पूछा, सब बताया उसने। मैंने पूछा क्या क्यों परेशान हो, हमें सीखना है इस कहानी से बहुत सुंदर बात। कहा मैं फैक्ट्री में जाता हूं, कुछ काम करा के आता हूं, पापा जाते हैं उसे सबको कैंसिल कर देते हैं, मुझे भी गुस्सा आता है, फिर वो कुछ काम करा के आते हैं, मैं जाता हूं मैं उनका सारा कैंसिल करा देता हूं। कहा ये संघर्ष हमारा चल रहा है दोनों का, अब मैं तंग हो गया हूं, हम तीन तो लोग हैं, घर नहीं महल है हमारे पास, तीनों के मुंह तीन दिशाओं में रहते हैं, हम कभी साथ में खाना भी नहीं खाते, बात भी नहीं करते हैं, मैं बहुत तंग हो गया हूं। अब देखिए एक और पैसा और संबंधों का सुख न होने के कारण क्या मनुष्य की मनोदशा होती है, ये इससे हम सीखते हैं कि हम एक दूसरे के विचारों को सम्मान दें। मैंने उसे सिखाया अब शुरुआत तुम्हें करनी है, पापा तो तुम्हारे बड़े हैं ना, उनमें ईगो हो सकता है, तुम में नहीं होना चाहिए, अब जो काम वो करा के आए तुम उसको आगे बढ़ाना। और उसने शुरू किया और फिर मुझे बताया कि अब जो काम मैं कराता हूं पापा आगे बढ़ाते हैं, बदल गया सब कुछ, हमारे थॉट्स, हमारा व्यवहार दूसरों को वैसा ही व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर देता है, हमारा ईगो दूसरे के ईगो को बढ़ा देता है, और हम जब अपने को बदलते हैं तो दूसरा भी बदलने के लिए तैयार हो जाता है। बहुत सारे केसेज में मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कराया, मेरी ये शुभ भावना है आप सभी का स्त्री पुरुष का संबंध बहुत स्वीट होगा ही, है ना सबका, थोड़ी धीमी आवाज है, चलो कर लेना। पति पत्नी झगड़ रहे हैं, पति सोच रहा ये बदले, पता नहीं कब बदलेगी, तो पत्नी भी वही सोच रही ये बदले, पता नहीं कब बदलेगा, दोनों एक दूसरे के बदलने की इंतजार कर रहे हैं। अब एक को सिखाया जाता है ये उंगली दूसरे की ओर करने के बजाय जरा अपनी ओर कर लो, मुझे बदलना है। जैसे ही एक व्यक्ति ये उंगली अपनी ओर करता है, दूसरा भी उंगली अपनी ओर कर लेता है, मुझे बदलना है। ये बहुत सुंदर कला है, इसको सभी अपनाएंगे, अपने को बदलेंगे, बहुत अच्छा होगा। अभी अभी 3-4 दिन पहले हम ईश्वरीय महावाक्य सुन रहे थे, हम लोगों को बहुत सुंदर ईश्वरीय महावाक्य सुनने का रोज भाग्य मिलता है, और ये हमारे जीवन को बदलने के लिए, सुख शांति के लिए बहुत सुंदर बात होती है। मैं तो देखता हूं रोज सवेरे 7 से 8 का टाइम मेरे जीवन का सबसे सुंदर समय होता है, कभी 6:30 से 8 का, जब हम ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं, और वो सुंदर बातें रोज हमारे विचारों को आनंदित करती हैं, नए विचारों का सृजन होता है, अपनी कमियों पर दृष्टि जाती है, उसको हम निकालते हैं, बहुत सुंदर ये चीज है। आप सब भी इसका बहुत फायदा उठाया करें। तो एक सुंदर बात सुना रहा हूं, विदेशियों का टर्न था, उसके सम्मुख शिव बाबा आते हैं, बोल रहे थे कि विदेशियों में बचपन से ही सहनशीलता की बहुत कमी होती है, मैंने भी देखा। तो क्या करते हैं वो, साथी को बदल देंगे, नौकरी का स्थान बदल लेंगे, लेकिन खुद को नहीं बदलेंगे। बहुत सुंदर ये बात है, मैं इस पर आपको ले चलता हूं। इससे पहले एक हंसी की बात सुना देता हूं। विदेशों में कई जो क्रिश्चियन कंट्रीज है ना, लोग कहते हैं हमारे यहां 3 W हैं, उन पर कभी विश्वास नहीं होता हमें। 3 W बताएंगे कौन कौन से? ठीक बोल रहे, होके आए होंगे आप विदेश से। वाइफ, वेदर और वर्क, इसलिए सबके अकाउंट अलग अलग रहते हैं, सबकी कार्य अलग अलग रहती हैं, घर पे नाम अलग अलग रहते हैं, और जैसे मैरिज होती है उन्हें पता होता है पता नहीं कब विदाई हो जाए, पहले से तैयार रहते हैं। तो देखिए मेंटेलिटी कितनी निगेटिव है, शुरू से पहले दिन से ही इसका प्रभाव जीवन पर बुरा पड़ता है। तो मैं ये बता रहा था, वहां वर्क लोग बदलते ही रहते हैं, कहीं कहीं तो 6-6 मास में बदलते हैं। मैं पूछता था क्यों बदलते हो, अरे 6 मास इन लोगों के चेहरे देखते देखते बोर हो गए, अब किसी और के देखेंगे। मेरे पास आते हैं यहाँ, पूछते हैं तुम किचन में ही हो शुरू से, 50 साल हो गए। मैंने कहा बोर नहीं होते, क्या भारत वाले लोग बोर नहीं होते? एक हंसी की बात और सुना देता हूं, वो आपको बहुत पसंद आएगी। ऑस्ट्रेलिया में मैं था तो लगभग 30 पब्लिक प्रोग्राम हुए, रोज एक होता था, होटल्स में हॉल होते थे, वो लिया और लोग आए, तो मुझे रोज ही कहते थे भाई 45 मिनट लेक्चर करना है और बाकी आगे क्वेश्चन आंसर। जब 5-7 बार हो गया तो मैं उन्हें पूछा 45 मिनट ही क्यों, मैं घंटा लेक्चर कर देता हूं कि नहीं 45 मिनट ही क्यों? हमारे यहां ये मान्यता है, प्रबल मान्यता है कि मनुष्य की बुद्धि की ग्रहण शक्ति केवल 45 मिनट है, उसके बाद तुम समझाओगे तो ऊपर से जाएगा। मैंने कहा तो हमारे भारतवासी बहुत पावरफुल हैं, जो घंटों घंटों सुनते रहते हैं, बीच में सो भी लेते हैं फिर सुन लेते हैं, और ये सत्य है। सबसे पावरफुल देश और महान देश ये भारत ही है। अब तो पावरफुल उन्हें कहने लगे ना जिनके पास एटॉमिक एनर्जी ज्यादा हो या पैसा ज्यादा हो, पैसा तो हमारे देश में भी कम नहीं है, एटॉमिक एनर्जी भी है, पर सबसे अधिक शक्तिशाली देश वही होगा जिसके मनुष्य चरित्रवान होंगे, जहां खुशी का माहौल होगा, जहां कोऑपरेशन होगा, सिंपल भाषा में कहें जहां पारिवारिक प्यार और संबंधों में लोग बंधे होंगे। विदेशों में क्या होता है, बाइक वाला गिर गया, एक्सीडेंट हो गया है, लोग रुकेंगे नहीं, आगे जाके पुलिस को फोन करेंगे, देखो भाई कोई एक्सीडेंट हो गया। और हमारे भारत में कोई एक्सीडेंट हो गया हो जाए तो 100 लोग आ जाते हैं फट से, चलो कोई लड़ने भी आएगा लेकिन मदद करने बहुत आते हैं ना। तो हमारा देश सचमुच बहुत ब्यूटीफुल है, ये केवल गीत गाने के लिए नहीं, ये सोने की चिड़िया था, सचमुच सोने की चिड़िया था, और यहां के मनुष्य भी स्वर्ण तुल्य ही थे, देवी देवता थे। मैं आपको और इसमें जोड़ दूं कुछ बात, इसी स्टेज पर हमारे यहां 2-4 साल पहले रशिया में हमारे बहुत सारे सेंटर्स हैं, तो वहां की 21 कन्याओं ने अपने जीवन को समर्पित किया था। जैसे यहां देखते हैं आप, ये सफेद वस्त्रधारी बहने, हम लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया हुआ है इस ईश्वरीय कार्य के लिए। तो 21 कन्याओं ने किया था एक साथ, तो उनमें से 9 यहां आई थी, तो उन्हें कहा गया एक को के अपना अनुभव सुनाओ। तो एक यहीं बैठी और उसने कहा, मैं भगवान की खोज में भारत में 4 बार आई। जब उसने समाप्त किया तो मैंने उससे पूछा, अमेरिका क्यों नहीं गई? लोग तो अमेरिका जाते हैं ना, सोचो आप भी, भगवान की खोज के लिए कोई निकला हो तो कदम किधर आएंगे? केवल भारत में। शांति की किसी को तलाश हो तो वो भी भारत की टिकट कटाएगा। किसी को ज्ञान चाहिए वो भी भारत में आता है। ज्ञान की पढ़ाई नहीं, सांसारिक पढ़ाई के लिए तो अभी भारत भी बहुत आगे निकल गया है। लोग कोई अमेरिका जा रहा, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई इंग्लैंड जा रहा है, लेकिन ज्ञान संसार में किसी को भी चाहिए भारत में आता है। आपने सुनी होगी, किसी ने पढ़ी हो उस एक सन्यासी की बायोग्राफी, जो लंदन में बहुत बड़ा वकील था, लीडिंग एडवोकेट था, 53 साल की आयु में बहुत परेशान, बहुत परेशान, अपने कोर्ट में चक्कर खा के गिर गया था। उसकी बुक का नाम है मंक हू सोल्ड हिज फरारी, एक सन्यासी जिसने अपनी फरारी कार बेच दी थी। हाँ, रोबिन शर्मा की है वो। तो देखिए, जब वो बहुत परेशान हुआ, पैसा था उसके पास, कई लैंड खरीदे हुए थे उसने, आइलैंड होते ना सागर के बीच में, तो ज्ञान की जब उसको इच्छा हुई तो सीधा भारत में आया, कश्मीर में आया, पहाड़ियों पे चढ़ा। उसने बताया, उसको बताया वहां एक संत रहते हैं कुछ, वहां तुम्हें सद ज्ञान मिलेगा। तो देखिए, संसार में सब कुछ हो सकता है, परंतु सुख शांति प्रेम आनंद सहयोग ज्ञान प्रभु मिलन, ये भूमि केवल भारत ही है। इन सब के लिए हम सचमुच बहुत भाग्यवान हैं। और अब हम, यानी हमारा देश, इस ओर बढ़ रहा है। मैं आपको भविष्य के बारे में कुछ कह देता हूं। इस संसार के लिए बहुत बैड टाइम आ रहा है। ये संसार विश्व युद्ध की चपेट में आ जाएगा थोड़े ही सालों में। आप सब समाचार तो सुनते ही होंगे किम जोंग जैसे तानाशाह जहां संसार में हो, वो कब तक माफ करेंगे लोगों को? और उधर ट्रंप जी हैं, और लोगों में एक वो हो रहा है क्रेज जैसा। आज ईरान ने कर दिया मिसाइल का परीक्षण। तो ये चल रहा है, क्योंकि इस संसार को बदलना है। बहुत ध्यान से सुन लेना जो मैं आपको कहने जा रहा हूं। लेकिन भारत के लिए गुड टाइम आता जाएगा, थोड़ा परिवर्तन होगा यहां भी, लेकिन बहुत सुंदर समय आता जाएगा। और ये हमारा देश, जो भगवान की जन्मभूमि और कर्म भूमि है, जिस धरा पर भगवान के चरण पड़ते हैं, जिस पावन भूमि पर देवताओं को जन्म मिलता है, जहां श्री राम श्री कृष्ण हनुमान जैसे महावीर पैदा होते हैं, ये भारत स्वर्ग बन जाएगा। और जैसा हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, हम तो बहुत साल से कह रहे हैं, उन्होंने तो अभी कहा है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। ये बनेगा, क्योंकि यहीं से लाइट माइट पीस प्योरिटी के वाइब्रेशंस संसार में जाएंगे, यहीं से सद्विवेक संसार में फैलेगा। शांति का केवल संदेश नहीं, शांति के वाइब्रेशन संसार में फैल जाएंगे यहां से। तो मैं आपको लास्ट लाइन बोलकर आगे चलता हूं। मैंने अपनी आंखों से देखिए, आप सोच रहे होंगे ये छोटी छोटी आयु की बहनें, इन्होंने अपना सफेद साड़ियां पहन ली हैं, जीवन को अर्पित कर दिया है इस महान कार्य में, क्यों कर दिया? ये क्या हो गया इनको? कई तो कहते हैं पागल हो गए, कई कहते हैं इनको कोई काम धंधा नहीं होगा इसलिए यहां आ गए, कई कहते हैं इनको नौकरी नहीं मिली होगी इसलिए यहां आ गए। बिल्कुल नहीं, संसार के हर समुदाय के लोग यहां पर हैं, जिन्होंने अपने जीवन को डेडिकेट किया। बहनें बहुत हैं, मुस्लिम समुदाय से भी हैं, जैन समुदाय से हैं, सिख परिवारों से है, हिंदू के भिन्न भिन्न संप्रदायों से हैं। क्यों उन्होंने जीवन समर्पित किया? हाईली एजुकेटेड हैं, कई वकील भी हैं, कई एमबीए करके समर्पित हो गई, कई एमटेक करके समर्पित हो गई हैं, बहुत अच्छे अच्छे परिवारों की भी हैं, साहूकार घरों की भी, तो बिल्कुल गरीब घरों की भी हैं। क्यों अर्पित किया होगा अपने जीवन को? कुछ तो रहस्य होगा ना। क्यों ये पवित्रता का मार्ग चुना? क्यों इन सब ने सफेद साड़ियां धारण कर ली? तो मैं वही एक लाइन आपको बोल रहा हूं, जिसको ध्यान से सुन लेना। हमने अपनी आंखों से इस धरा पर जो निराकार परम सत्ता है उसको उतरते हुए देखा है हजारों बार, उसे मिलन किया है। इन सब ने ये जीवन त्याग भरा, सादगी भरा इसलिए अपना लिया है क्योंकि इनका प्रभु मिलन हो गया है। और आप सबको मैं यही कहूंगा, क्योंकि परमात्मा हमारे परम पिता हैं, हैं या नहीं? कल आपको सवेरे इसका लेसन मिल जाएगा अच्छी तरह। वो हमारे परम पिता हैं, ये आज मिल गया होगा शायद, भगवान का परिचय हो गया ना। वो हमारे परम पिता हैं, पिता से मिलना हमारा अधिकार है। आप सबका प्रभु मिलन होगा, हो सकता है नहीं? आप जरा सा आगे बढ़ें, प्रभु मिलन के सुखद क्षण, परमानंद से भरे हुए क्षण आप अनुभव कर सकते हैं। और जब हमारा प्रभु मिलन हो जाता है, कई लोग सोचते हैं भगवान से मिलन हो जाए, उसके दर्शन हो जाएं, तो शायद मनु संसार छोड़ के जंगल में चल देगा। ऐसी बात नहीं, फिर तो जंगल भी संसार बन जाएगा ना। कितने लोग जाएंगे जंगल में? अब जंगल वाले सन्यासी शहरों में आ गए तो हमें जंगल में जाने की क्या जरूरत है भाई? ठीक बात है ना। अधिकार है हमारा उससे मिलने का। मैं आप सभी को यही बात कहूंगा, यहां जो ज्ञान दिया जा रहा है वो उसके द्वारा दिया जा रहा है। यहां आपको शास्त्र पढ़ के नहीं सुनाए जा रहे हैं, यहां भागवत की कथा नहीं सुनाई जा रही है, सीधा ज्ञान दिया जा रहा है। बाबा के बहुत सुंदर शब्द थे, बाबा हम किसी और को नहीं कहते, निराकार को कहते हैं, बहुत सुंदर शब्द थे। मैंने फैक्ट्री खोली है, आप लोगों ने भी खोली है ना कईयों ने फैक्ट्री? भगवान ने फैक्ट्री खोली है, बताओ क्या बनता है? मनुष्य देवता बनाने की फैक्ट्री। हो सकती है ऐसी फैक्ट्री संसार में कहीं? उसके लिए किससे परमिशन लेने की जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती। हम सभी देव कुल में थे सतयुग में, अब जीवन जीने का मार्ग सीखेंगे सभी। और उस बात पे मैं आऊंगा जो विदेशियों की बात मैं कर रहा था। हम सभी देव कुल में थे, तभी देवताओं से हमारा बहुत प्यार है, है या नहीं? देवताओं के चित्र देखेंगे, कोई माने या न माने सम्मान जरूर रहता, शीश झुक जाता है, क्योंकि वो हमारे हैं, हमारे पूर्वज हैं, वो हम उनके ही वंशज हैं। हम भी देवी देवता थे, सबने चलते फिरते कहीं ना कहीं सुना है भारत में कितने देवता थे? 33 करोड़। तो वो हम ही सब थे ना, वो कहीं आसमान में थोड़े ही चले गए। हम सब जन्म लेते लेते अब यहां आ गए हैं, अब अपने पूर्वजों को सम्मान अर्पित कर रहे हैं, उसे पूजा पाठ कहते हैं। पूजा पाठ और कुछ नहीं, अपने पूर्वजों को सम्मान देना। तो ध्यान देंगे, हम सभी के अंदर देवत्व है, देव संस्कार हैं हमारे अंदर, उन्हें जगाएं तो बाकी जो बुरे संस्कार आ गए हैं वो आप ही खत्म हो जाएंगे और ये जीवन बहुत सुखी हो जाएगा, आनंदकारी हो जाएगा। मैं चाहूंगा हम सभी एक मिनट डीप साइलेंस में बैठे, जरा फोकस करेंगे, रेड लाइट करें भाई, फोकस करेंगे आत्मा पर, बिल्कुल विजुअलाइज करें, अपने स्वरूप को देखें। मैं चमकती हुई ज्योति, बहुत पीसफुल हूं, पीसफुल स्याम। शांति मेरी नेचर है, मैं प्रेम से भरपूर हूं, मेरा मूल स्वरूप संपूर्ण पवित्र है, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं भगवान की संतान हूं, उसकी संपूर्ण शांति मुझ में विद्यमान है, मैं शांत हूं, पीसफुल हूं, ओम शांति। ये छोटे छोटे अभ्यास हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, हमारे संकल्पों की स्पीड को स्लो डाउन कर देते हैं। कार्य क्षेत्र में अगर बीच बीच में हम ये करते रहें तो बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। थोड़ी भी टेंशन हुई हो वो रिलीज हो जाएगी और नई एनर्जी हमारे अंदर आ जाएगी। हम बात कर रहे थे कि शिव बाबा ने विदेशियों से मिलते हुए कहा कि विदेशियों में सहनशीलता कम होती है, साथी को छोड़ बदल देते हैं, काम को बदल देते हैं, अपने को नहीं बदलते। अब जरा एक बहुत बड़ी समस्या पे हम विचार करेंगे और उसका समाधान है अपने को बदलना, और वो समस्या भारत में भी तीव्र रूप लेती जा रही उग्र डिवोर्स की समस्या। बहुत सारी मैरिजेज सफल नहीं हो रही हैं, आपके कईयों के बच्चों को इसका सामना करना पड़ रहा होगा, और आप जानते हैं कि जब दो का तलाक होता है उनके मन पर कितना बुरा असर आता है, क्योंकि भारत की ये कल्चर नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर है, उनको आदत पड़ जाती है। लेकिन हमारे भारत की कल्चर है वो पारिवारिक संबंधों में एकजुट होकर रहने की है, तो बहुत बुरा असर होता है, उसका प्रभाव बच्चों पर आता है। हम समझ सकते हैं हमारी भावी पीढ़ी कैसी हो जाएगी। तो हमारे देश को अगर हमें महान बनाना है तो इसको ठीक करना है, ताकि हमारी अगली पीढ़ी बहुत सशक्त, बहुत बुद्धिमान, बहुत चरित्रवान, प्रेम से भरपूर, सुख शांति से भरपूर, तब अनेक टैलेंट्स जीवन में उभरते हैं। तो स्वयं को बदलेंगे, क्या क्या बदलेंगे? एक बहुत सूक्ष्म चीज, हमारे एटीट्यूड्स जो भी हैं दूसरों के लिए उसको बदलें। देखो आप यहां आते हैं, यहां के वाइब्रेशंस कैसे लगते हैं आपको? मजा आता है ना यहां? क्योंकि आप यहां आए हैं, और भी जो भी आते हैं, हर हफ्ते नया ग्रुप आता है। हम सब जो यहां रहने वाले हैं वो क्या सोचते हैं? हमारे अपने भाई बहने आए हैं, हम सब देवकुल की मान आत्माएं हैं, जन्म जन्म साथ रहे होंगे, बहुत अच्छी आत्माएं यहां आई हैं, भगवान के बच्चे आए, ही एटीट्यूड रहता है। हम ये नहीं सोचते कौन आ गए, पता नहीं खाने पीने आ गए, मौज करने आ गए, ये नहीं सोचते हम, ये नहीं सोचते। महान आत्माएं आई हैं, वे आत्माएं आई हैं जो भगवान से मिलेंगी, जो देव कुल की हैं, जो बहुत भाग्यवान है, तो हमारे एटीट्यूड के कारण वाइब्रेशंस बहुत अट्रैक्टिव रहते हैं, बड़े आनंदकारी रहते हैं। आप अपने घरों में इसका प्रयोग करें, अपने कार्य व्यवहार में इसका प्रयोग करें। छोटा सा अनुभव सुना देता हूं। अभी 8-10 दिन पहले हम कोलकाता थे, तो एक व्यक्ति आया हमें कार में कहीं ले जाने के लिए। हमने उसका परिचय पूछा, तो उसका बहुत बड़ा धंधा है मेडिसिन सप्लाई करने का, सारे बंगाल में, सारे बिहार में, सारे उड़ीसा में। मैंने पूछा, आपका तो कामकाज बहुत बड़ा, कितने लोग काम करते हैं साथ में? 250। बहुत बड़ा हमारा स्टोर है, बड़े बड़े 250 लोग काम करते हैं। मैंने पूछा, तो ठीक ठाक रहता है, आप करा लेते हो? उसने ये ज्ञान केवल 6 मास से लिया था। कहा 6 मास से पहले मैं बहुत टेंशन में रहता था, मेरा बीपी बढ़ा रहता था और मैं परेशान रहता था कि पैसा तो आ रहा है लेकिन मजा नहीं आ रहा। 6 मास से मुझे ऐसा सद्विवेक मिला तो मैं इन 250 को आराम से एक परिवार बना दिया है और हमारा परिवार अब बहुत सुखद है। मेरे इशारों पे काम होता है, सब कोऑपरेट करते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं। मैंने कहा, क्या क्या करते हो? देखो, उसने 6 मास ईश्वरीय ज्ञान लेने पर कितना अच्छा कर दिया। कहा, एक साथ सब लोग आ जाते हैं, टाइम रखा हुआ है, जो भी रखा हुआ, एक साथ सब लोग आ गए, पहले हम वंदे मातरम का गीत गाते हैं, फिर मैं उन्हें 3 मिनट ऐसे योग की कमेंट्री देकर योग कराता हूं, फिर मैं उनसे संकल्प कराता हूं, ये सब हमारा काम है, हमें जिम्मेदारी से कार्य पूर्ण करना है, ये सब 250 का हमारा परिवार है, हम सब एक हैं। कहा, 6 मास से करते करते सब एक हो गए हैं। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा और आश्चर्य भी लगा कि ये व्यक्ति कितना योग्य है जिसने टीम को इतना यूनाइट कर लिया 6 मास में। ये कला है, हम अपने एटीट्यूड्स को बदलें। पहले वो सोचता होगा, ये सब मेरे पास नौकरी करते हैं, मैं मालिक हूं, सेठ हूं। अब वो सोचता है, ये सब मेरे भाई बहने हैं, ये मेरा परिवार है, हम सब एक हैं। एटीट्यूड बदलते ही सब कुछ बदल गया, क्योंकि जैसे हमारे एटीट्यूड्स होते हैं, जैसे हमारी दृष्टि होती है दूसरों के लिए, दूसरे वैसा ही हमसे व्यवहार करते हैं, रेस्पॉन्स वैसा ही आएगा। तो अपने एटीट्यूड्स को बदलना है, बोलने के तरीके को बदलना है, सोचने के तरीके को बदलना है। सोच बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम अपने सोचने के तरीके को बदलें। मैं ले चलता हूं आपको बहुत प्रैक्टिकल चीज पर। बिजनेस वालों में एक थोड़ी सी खराब आदत पड़ जाती है। आप कहेंगे, खराब बात क्यों बोल दी मैंने? हम लोग सब बचपन से पढ़ते थे, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी हैप्पी, बहुत सारे सब थे वाइज। अब कई बिजनेसमैन रात को 12-1 बजे तक काम करते हैं, फिर सवेरे सोना ही पड़ेगा। जरा इसको रीमैनेज करेंगे आप। सवेरे उठकर, आप में से कई लोग सवेरे उठते होंगे, सवेरे उठकर प्रकृति का आनंद लेकर तो देखें। कईयों ने, मुंबई वालों ने तो सूर्य उदय नहीं देखा होता, कब अस्त हो गया, कब उदय हुआ, पता ही नहीं चलता। सवेरे यहां तो आप उठ जाते हैं ना, कैसा लगता है? कैसा लगता है? लगता है कि सवेरे उठना चाहिए, उठ सकते हैं? ठीक है, 4 बजे नहीं, पर थोड़ा सा तो जल्दी कर लें, 6 बजे से पहले पहले उठ जाएं और कुछ सुंदर विचारों से अपने मन का श्रृंगार करें। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है जीवन को सुंदर बनाने के लिए। अब देखिए, कुछ लोग इस संसार में पास्ट में जीते हैं, कुछ लोग भविष्य की चिंताओं में जीते हैं, और जीना चाहिए वर्तमान में। वर्तमान को एंजॉय करें, हमारा वर्तमान बहुत सुंदर है। वर्तमान सुंदर तो फ्यूचर आप ही सुंदर होगा। मैं आपको बहुत सुंदर प्रैक्टिकल बात पर ले चल रहा हूं। सभी आज से पास्ट को भूलने का संकल्प करें। कुछ भी हुआ हो, किसी ने आपसे बुरा व्यवहार किया हो, धोखा दिया हो, आपको परेशान किया हो, कटु वचन बोले हो, अब वो बीत गया, उन्हें क्षमा कर दो। कर सकते हैं क्षमा या नहीं? या जब तक बदला नहीं लेंगे चैन की नींद नहीं सोएंगे? क्या विचार है? मन उसमें हो गया है, किसी ने ज्यादा ही सताया है ना, बात अननेचुरल नहीं, बिल्कुल नेचुरल होती है, कोई ज्यादा ही सता देते हैं तो मनुष्य सोचता है इसको तो ठीक करना ही पड़ेगा, औरों को भी सताएगा नहीं तो। लेकिन अपने आनंद के लिए उन्हें जरा क्षमा करो, पास जो कुछ हो गया उसको बदल नहीं सकते, आगे की ओर ही देखना है। जो मनुष्य बार बार पीछे मुड़कर देखता है वो मंजिल पर पहुंचेगा कदापि नहीं, केवल आगे की ओर देखना। आपके बिजनेस में कुछ हुआ हो, कुछ और झंझट हुआ हो, परेशान होने की जरूरत नहीं। एक प्रैक्टिकल कहानी, बहुत साल पहले पटियाला में पंजाब डैम टूटा, तोड़ा गया था क्योंकि ओवरफ्लो हो रहा था, दुकानों की जो ग्राउंड फ्लोर था उस सब में पानी भर गया, बहुत नुकसान हो गया बिजनेस वालों का। मीटिंग हुई, अब जो प्रेसिडेंट था सबने अपना अपना बोला गवर्नमेंट से, ये मांग करेंगे, ये करेंगे, इतना नुकसान हो गया क्योंकि गवर्नमेंट की ओर से डैम को तोड़ा गया था, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाता, पानी छोड़ा गया वो ज्यादा टूट गया। तो देखो लास्ट में उसने भाषण किया, कितनी सुंदर बात कही, आपका भी अनुभव होगा, बहुतों का अनुभव है। कहा हम सब ने अपना बिजनेस क्रिएट किया है ना, रचयिता हम हैं। कई हम में से ऐसे भी थे जो एक अटैची लेकर पटियाला में आए थे, गांव से बड़ा बिजनेस फैला दिया, विदेशों में मुझे मिलते हैं लोग, एक मिला, मैं केवल 200 रुपए लेकर बेंगलोर में आया था गांव से हरियाणा से, और आज मल्टी मिलियनर है, एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा काम अपना बढ़ा दिया। तो उसने कहा ये सब हमने क्रिएट किया है ना, और हम जिंदे हैं, यही तो गया है ना, हम तो नहीं गए, हम फिर से क्रिएट करेंगे। सब में एनर्जी आ गई, सबने कंप्लेंट करना बंद कर दिया और फिर से सभा समाप्त हुई और सबने फिर से फुल फोर्स से काम करना शुरू किया, फिर से आगे बढ़ गए। तो कुछ भी पास्ट में हो गया है विदाई दे दो, बोलो देंगे, होल्डिंग नेचर नहीं, पकड़ के रखने की नेचर नहीं। अब सुन ले एक सीक्रेट, जो व्यक्ति बातों को पकड़ कर रखता है जीवन में आने वाले स्वर्णिम अवसरों को मिस कर देता है। जो होल्ड करके रखी हैं बातें उसको बहुत बीमारियां होती हैं। अगर आप बीमारियों से मुक्त होना चाहते हैं, घुटने दर्द से मुक्त होना चाहते हो, आपको सिर दर्द रहता है, टेंशन रहती है, तो बातों को रिलीज कर दो, गया जो कल तक हो गया गया, वो उसे हमारा कोई नाता नहीं। अपने विचारों को जरा ओपन अप करो, महान बना दो, खोल दो। अरे किसी ने कुछ कहा तो क्या हुआ, छोड़ो, पास्ट को खत्म करें। फ्यूचर की जो चिंता होती है वह सुंदर बात आपके सामने आ रही है। कईयों में बहुत चिंता करने की आदत है। मैं आज एक ग्रुप से बैठा था तो सुना रहा था, एक माताजी ने मुझे फोन किया, छोटी आयु की बहन, कहा मेरा लड़का दूसरी क्लास में पढ़ता है, मुझे उसके भविष्य की बहुत चिंता रहती है, इसका क्या होगा। और एक बात और बोल दी थोड़ी खराब से, कहा मैं सोचती हूं कल मैं मर जाऊं तो इसका क्या होगा। मैंने कहा किस ज्योतिषी ने प्रोग्राम दिया मरने का जल्दी तुम्हें, चिंता करने की आदत। मैंने उसे कहा हो सकता है तुम्हारा ये बच्चा तुमसे भी महान भाग्य लेकर पैदा हुआ हो, ये तुम्हारी पालना करने लगे अभी से। तो चिंता करने की आदत। अब मैं आपसे एक बहुत सुंदर संकल्प कराऊंगा जो आपको बहुत काम आएगा जीवन भर, 7 दिन कर देना सवेरे उठ के, लेकिन सवेरे उठ के करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अंतर्मन सवेरे के समय जागृत रहता है। देखिए जो कुछ हम सोचते हैं, बहुत बड़ा सीक्रेट है, ध्यान देंगे, आत्मा यहां बैठकर सोच रही है, उसकी एनर्जी सीधा ब्रेन को जाती है, ब्रेन से फिर बाहर फैलती है, प्रकृति में जाती है। अगर आप उल्टा सोच रहे हैं, निगेटिव सोच रहे हैं, कंफ्यूज्ड माइंड से सोच रहे हैं, डाउटफुल माइंड से सोच रहे हैं, तो ये एनर्जी पहले ब्रेन में जा रही है फिर बाहर फैल रही है, प्रकृति से इसका रिएक्शन हो रहा है और वही चीज बनकर वापस आपके पास आ रही है। आप सोच रहे हैं मेरा बिजनेस खराब ना हो जाए, कहीं कुछ बिगड़ ना जाए। ये निगेटिव थॉट्स प्रकृति में जा रहे हैं और प्रकृति से वैसे ही वाइब्रेशंस आपको आएंगे जो आपका खेल बिगाड़ देंगे। क्लियर है? संसार की हर घटना के पीछे, हमारे भाग्य के पीछे, हमारी सफलता के पीछे, हमारे संबंधों के सुख के पीछे हमारे ये विचार ही काम कर रहे हैं। इसलिए आज से, अब से एक सुंदर विचार करेंगे सभी, मेरे साथ अब से सब कुछ बहुत अच्छा होगा। पसंद है? अगर आप 21 दिन कर दें रोज सवेरे 3 बार, फिर आदत बन जाएगी। 21 दिन हम इसलिए कहते हैं ताकि वो आदत बन जाए, तो कहीं भी कुछ हो आपको वही संकल्प आएगा, नहीं सब कुछ अच्छा हो जाएगा। करेंगे? अब साइलेंटली बैठेंगे, 1 मिनट के लिए रेड लाइट करो भाई। मैं आपको वो संकल्प देता हूं, वो करें और अपने अंदर समा दें उनको बिल्कुल। मैं भगवान की संतान बहुत भाग्यवान हूं। स्वीकार कर लें, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। स्वयं भगवान मेरे परम पिता हैं, उनके आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर है। मेरे साथ आज से सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे बच्चों के साथ, परिवार के साथ, कार्य के साथ सब कुछ बहुत बहुत अच्छा होगा। मैं बहुत भाग्यवान हूं। ओम शांति। 7 बार कर लेंगे, और 7 दिन तक कम से कम, रोज 3 बार सवेरे। दिन में भी कर सकते हैं, सोते भी कर सकते हैं, बस सवेरे का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आपसे कभी छूट जाए, कभी भी आप अपने कार्य पे जाते हैं, आपको बड़ी दुकान है वहां प्रवेश करते हैं, वहां संकल्प कर लें, बहुत गुड रिजल्ट है। हमने तो भगवान के महावाक्य सुने हैं, हमेशा मुख से बोलो सब कुछ अच्छा होगा, तो अगर बुरा होने वाला है वो भी अच्छे में बदल जाएगा। बहुत बड़ी चीज है ये। इसलिए भविष्य की चिंता नहीं, भविष्य का निर्माण करना है हमें, चिंता नहीं। तो थोड़ा सवेरे जल्दी उठेंगे, मैं आपसे हां कहलवाना चाहता हूं, जबरदस्ती नहीं, दिल से उठेंगे। थोड़ा सा जल्दी उठना एक सुंदर बात जीवन के लिए। सो रात को मुस्कुराते हुए, और उठो तो भी मुस्कुराते हुए। उठते ही अखबार नहीं पढ़ना, न टीवी देखना, ध्यान देना आधे घंटे बाद, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। हमने अखबार पढ़ लिया और पहली न्यूज आ रही है, अमेरिका ने उत्तर कोरिया को धमकी दी, तुम्हें बर्बाद कर देंगे। क्या जाएगा अंदर? खुशी आई, शांति आई, या कुछ और गया? अब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है और हमने ये पढ़ लिया है, एक निगेटिविटी, टेंशन, अशांति हमारे अंदर चली गई। अब सोचो आप, ये दो नेता तो धमकी दे रहे हैं, लेकिन वहां के जो लोग हैं उनमें जरूर भय व्याप्त हो रहा होगा ना। होता है, कोरिया कोई बहुत साहूकार देश नहीं है, गरीब है, वो सारा पैसा इस पे खर्च कर रहे हैं। वहां के लोगों को डर है कि इस तानाशाह ने कहीं बम छोड़ दिया तो पूरा देश हमारा नष्ट हो जाएगा, डर रहता है। तो हमारे अंदर एक डर पैदा होता है, पीसलेसनेस पैदा होती है। हम सवेरे उठ के सुंदर विचारों का सृजन किया करें अपने जीवन में। सवेरे उठते ही अब मैं आपको थोड़ी सी रोशनी दे देता हूं, जो मैं भी करता हूं रोज, और सवेरे आप सब भी किया करें। उठते ही पहले अपने परमपिता को गुड मॉर्निंग। भारत में तो परंपरा थी ना, आपके कईयों के घरों में मंदिर होंगे, लोग उठते ही मंदिर में जाते थे, देवी देवताओं के सामने खड़े हो जाते थे। लक्ष्य यही था कि आंख खुलते ही सुंदर विचार मन में चलने लगे, सुंदर भावनाएं जग जाएं मन के, प्योर संस्कार जग जाएं हमारे अंदर के। तो सवेरे उठते ही अपने परम पिता को गुड मॉर्निंग करेंगे, मिलन होने लगेगा आपका उससे, बहुत सुंदर अनुभव होंगे आपको, फील होगा उसका आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर आ गया और आवाज आ गई, चिंता नहीं करो मैं हूं तुम्हारे साथ। दूसरा संकल्प करना, हे शिव बाबा, हे प्रभु, जो भी आप उसे कहें, आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। खोल दो जरा दिमाग को, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, उसको ज्यादा दिया, मुझे नहीं दिया, ये सब नहीं होता है ना। पड़ोसी को ज्यादा दे दिया, उसकी फैक्ट्री ज्यादा अच्छी चला दी, तुमने क्या कर दिया, मेहनत मैंने की, नाम उसका हो गया, वो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया, ये सब नहीं। आपने मुझे सब कुछ दिया, करके देखना, आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। सब कुछ बढ़ने लगेगा। आपने मुझे सुंदर बुद्धि दी, बहुत अच्छा परिवार दिया, आपको बारंबार शुक्रिया। पत्नी खराब दी, लड़ाकू दे दी, ये नहीं, ये नहीं, बहुत अच्छा दिया। नेक्स्ट संकल्प करना, मैं बहुत भाग्यवान हूं, कभी भूल से भी नहीं करना मेरा भाग्य खराब है, मैं बहुत भाग्यवान हूं। तीन बार करना सवेरे, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। बोल दो जरा एक बार, मेरे जैसा भाग्यवान कोई। खुल जाएंगी सलवटें इधर की, और आपका भाग्य अगर सोया भी हो तो वो जग जाएगा। जिनको भी भाग्य की कमी पड़ रही हो, आपके साथ जो वर्कर्स हों, ऑफिसर्स हों, उनको भी सिखा दो, सवेरे उठ के ये करो, सोया हुआ भाग्य जग जाएगा। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता का द्वार खुल जाएगा। मैं बहुत सुखी हूं, बहुत निरोग हूं। बहुत कम करेंगे संकल्प, रोग भागने लगेंगे। मैं बहुत धनवान हूं, सुंदर संकल्प। तीन तीन बार, चार बार रोज करना, उठते ही आपका दिमाग भी चार्ज हो जाएगा और आप देखेंगे कैसे मन खुशियों का भंडार बन गया है। एक नई एनर्जी के साथ आप अपने कार्यों पे जाएंगे। लोग इसे ही तो मिस कर रहे हैं, कोई 8 बजे उठता है, कोई 10 बजे उठता है, कोई कोई तो बिजनेसमैन का मुझे पता लगता है 12 बजे उठते हैं सो के, फिर खाते हैं, फिर रात को 12 बजे खाते हैं, बीमार हो जाएंगे ना। इसलिए देर से खाने की आदत को खत्म करें। मुझे जैनिज्म का ये सिद्धांत सबसे सुंदर लगता है, जल्दी खाना, क्योंकि सूर्य की अग्नि गर्मी जब है ना, तब भोजन जल्दी पचता है। भले उनके सिद्धांत कुछ भी हो कि वे जीवाणु पड़ जाएंगे ये वो, लेकिन ये हेल्थ वाइज बहुत सुंदर चीज है। चलो आप 6-7 बजे न खाओ, पर 9 से पहले पहले अवश्य खा लेना। 8 बजे खाना बहुत अच्छा होता है, ताकि सोने तक हमारा भोजन पूरी तरह हजम हो जाए, फिर अच्छी नींद आएगी। और जब सोने आप जाएं, मैंने आपको कहा सो भी मुस्कुराते हुए, कोई बुरी चीज याद करते हुए नहीं, आज का मेरे जीवन का ड्रामा बहुत सुंदर बीता। फिर शिव बाबा को शुक्रिया कर दो, जो कुछ हुआ उसको अर्पित कर दो मन से, सब तुम्हारा, जो अप्स एंड डाउन्स हुए ये सब तुमको अर्पित, और सुखी होकर फिर सो जाओ, बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। सवेरे फिर जल्दी उठेंगे और जीवन का साइकिल बहुत ही काम का होगा, हेल्दी भी रखेगा, वेल्दी बनाएगा, वाइज भी बनाएगा, सक्सेसफुल बनाएगा, बहुत चीजें इससे प्राप्त होगी। इतना आप परिवर्तन कर लेना। और ये ज्ञान तो वरदान है, आप अपने अपने सेवा केंद्रों पे जाके जरा आगे बढ़ जाना, आप सभी का प्रभु मिलन हो जाएगा। बस मेरी यही शुभ भावना है। ये तो आपका घर है जहां आप आए हैं, है या नहीं? यहां आते रहिए, चार्ज होते रहिए, और शिव बाबा से जो वरदाता है, वरदान प्राप्त होते हैं यहाँ, वो लेते रहिए, और जीवन की यात्रा का, अपने परिवार का, अपने संबंधों का संपूर्ण सुख प्राप्त कीजिए। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।